Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yo Devo Agnau. Yo Apsu. यो दे विश्वं भुवनाम आविवेशः य ओषधेषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः यो देवो अग्नौ यो देव परमात्मा देवानी या परमात्मा समझ लेना जो देव जो परमेश्वर अग्नि में है जो अप्सु माने जो जल में है जो विश्वम भुवनम आविवेश जो विश्व को भुवन को आविवेश माने व्याप्त करके रहता है यह औषधिषु जो औषधियों में अर्थात अन्नादि में जो होता है औषधि माने अन्न को कहते औषधियों में यो वनस्पतिषु वनस्पतियों में वृक्षलतादियों में अनिवा अनुप्रविष्ट है तस्मै देवाय नमो नमः वो देवता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये कल के प्रसंग में बोला था क्या लाइक नहीं प्रत्येक जना स्थिष्यति ही सर्वतो मुखः सर्वतो मुखः अनिवा विश्वतो मुख सर्वमुख माने सब जितने मुख है ना सब मुख परमात्मा का ही है। तो मुख का क्या कान नहीं है आंख नहीं है क्या? तो विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वत बाहुत विश्वत स्पाक स्वाभ्यांधमति संपदत्रे द्यावा भूमि जनयन देवई का आया कि नहीं विश्व तो मुख विश्व तस्पा। तो तमाम जितने मुख है वो मुख किसका है? परमात्मा का ही है। जितना श्रोत्र है कान है वो परमात्मा का ही है। जितने आंखें है वो परमात्मा का ही है। जितना नाक है सब परमात्मा है। जितना हाथ है वो परमात्मा सहस्र श्री का पुरुका सहस्राक्ष सहस्र पात सभूमि कुंस्वित्वा यतिष्ठ दशा अंगुलम पुरुक वेदकुं सर्वम तद्भूतम दशभाग्यम। ये आप लोग रुद्री पाठ करते हैं ना, रुद्री में पहले आता है, पुरुष उत्तम में आता है, पहले आता है सहस्र श्रीरेखा। वो परमात्मा कैसा है? सहस्र उपलक्षित है, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों मस्तक है उसका। इधर सहस्र एक छंदों के लिए बतला दिया है, उपलक्षित है करोड़ों का अरबों का मस्तक। जितने मस्तक है सब उनका ही है, जितने हाथ है उनका ही है, जितना पैर है उनका ही है। देखो एक पदम द्विपदम त्रिपदम चतुष्पदम बिना पैर का भी वही है सर्पादि है ना उरग वो छाती के बल पर चलने वाला जो सर्प है। कीड़े मकोड़े है, कीड़े एक लंबे लंबे केसुआ के जैसे होता है ना बरसात के दिनों में, तो बिना पैर का है कि नहीं? बिना हस्त मस्तक आदि भी वही है, हस्तमस्तक आदि वाला भी वही है, कान वाला भी वही है, चक्षुश्रवा भी वही है। सर्प चक्षु से सुनता है याद रखना, उसका नाम है चक्षुश्रवा। कान नहीं है, आंख से सुनता है, दिखता भी है। एक ही जगह में दो इंद्रिया है, और तुम्हारे भी एक ही जगह में दो इंद्रिया कहाँ है? मुंह में है, यानी बात जवान तो जीवा को कहते हैं। मुंह में दो इंद्रिया है, बाघ इंद्रिय रसना इंद्रिय। रस ग्रहण करना हो तो रस इंद्रिय रसना इंद्रिय, और शब्द उच्चारण करना हो तो वाघ इंद्रिय। आनी बात तो ऐसे जितनी संसार में है वो सब के सब में परमात्मा व्याप्त है, कहने का तात्पर्य परमात्मा के सिवाय हर कुछ नहीं है। अभी देखो संसार को देखने का ढंग है, दो तरीका है, एक कार्य के रूप में कारण के रूप में, याद रखना। कार्य के रूप में देखोगे तो नाम रूपात्मक जगत देखेगा, कारण के रूप में देखोगे तो नाम रूप को बात करके जगत को देखो। जैसे सोना है आभूषण है तो सोना को देखने का दो तरीका है, एक हार कटक कुंडल बनावट आदि नाम रूपात्मक सोना, और सब के बात करने के बाद में जो बाकी रहे तो उसके रूप में देखो क्या सोने का रूप में। तो एक नाम रूप के एक दृष्टि से देखो कि बात करना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा, हार सोना नहीं आए, कटक सोना नहीं आए, कुंडल सोना नहीं आए, बीटी सोना नहीं आए, क्यों ये कल्पित वस्तु है सोना में, तो निषेध मुख। तो जगत को देखने के लिए भी दो रूप है, दो तरीका है, एक निषेध मुख से एक विधि मुख से। विधि मुख से देखोगे तो सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, और निषेध मुख से देखोगे तो नेति नेति करना पड़ेगा, अर्थात वो आदेशो नेति नेति, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, अस्थूल मनणु अश्व मदीर्घ मलहित स्नेह अच्छा मतम रस मगंधम, ये सब क्या करोगे। परमात्मा कैसे अस्थूल है, पहाड़ के जैसी है, सागर के जैसी है, आकाश के जैसे कहीं नहीं, यानी वह स्थूल नहीं, हर्ष है छोटा है नहीं, अणु परिमाण है क नहीं, अनणु हर्ष मदीर्घम लंबा है क नहीं, अरोहितम लाल है क नहीं, हरा है क नहीं, तो नहीं नहीं कर चलो। नेति 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 करो, जहां तक तुम्हारा है ना बुद्धि चलती है वहां तक चलो। क्यों दृश्यते तो सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी, इस तत्व को जानने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है, समझे कि नहीं, बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है। सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी लोग उस तत्व को जानते हैं, तो बुद्धि को सूक्ष्म कैसे किया जाए, विचार के द्वारा विवेक के द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है। दृश्यते तु अग्रिया बुद्धिया, बुद्धि के अग्रा भाग से देखा जाता है, कौन देखता है, सूक्ष्मदर्शी कैसे देखता है सूक्ष्म बुद्धि से, तो सूक्ष्म बुद्धि कैसे किया जाता है, शांत हो जैसे उस्तरा से तुम दाढ़ी बनाते हो, पहले के उस्तरा होते थे ना लंबा लंबा होता था, तो इसको पत्थर में घिसना पड़ता था तो उसमें तेजी आती थी तो दाढ़ी बनता था, अभी तो ब्लेड आ गया उसको सांध देना नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता तो फेंक दो, पहले तो सालों चलता था वो, जब दाढ़ी नहीं करता था तो उसको क्या करते थे, घिसते थे पत्थर में। ऐसे हमारी बुद्धि काम नहीं करती है महाराज, वेदांत कठिन है, यदि ऐसा कहता है बोले इसका तो बुद्धि को घिस, अभी बुद्धि को घिसते रहना, धीरे 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 इसमें सूक्ष्मता आती जाएगी। तो घिसना क्या है, बार बार श्रवण मनन करना, श्रवण मनन करते रहो तो बुद्धि तीव्र हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगी, तब तुमको मैं मालूम पड़ जाएगा अरे भाई इसमें कुछ है। जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं करोगे ना, स्थूल बुद्धि से स्थूल वस्तु का ग्रहण होता है। जैसे तावा पकड़ने के लिए चिमटा चाहिए कि नहीं, कितना बड़े चिमटा चाहिए, और एक हीरा के कण पकड़ने के लिए, घड़ी के पुर्जा को पकड़ने के लिए चिमटा चाहिए कि नहीं, वो कैसा चाहिए? क्यों? तावा के पकड़ने वाला चिमटा से घड़ी के पुर्जा नहीं पकड़ सकते हो, पकड़ तो दोनों बराबर है। परंतु सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म पकड़ चाहिए, और स्थूल वस्तु को पकड़ने के लिए, तो ऐसे समझ लेना स्थूल वस्तु क्या है, सूक्ष्म वस्तु क्या है। आत्मा तत्व क्या है? अणु और अणियान, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, उसके पकड़ने के लिए बुद्धि चाहिए। कैसी बुद्धि चाहिए? सूक्ष्मतम बुद्धि चाहिए, सूक्ष्मतर नहीं अनिवार्य। और संसार को पकड़ने के लिए मोटी बुद्धि चाहिए। नाचना करना होगा तो क्या करना चाहिए? हंसना रोना होगा तो क्या, कैसी बुद्धि चाहिए? उस पर तुमको बुद्धि का काम नहीं है, समझे कि नहीं? हंसो गाओ रो पढ़ो अनिवार्य, तालियां बजाओ ढपकी बजाओ फटका बजाओ, तो तुम्हारी बुद्धि ऐसे रहो, वो बुद्धि के द्वारा तुम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्यों? वो स्थूल पकड़ते पकड़ते बुद्धि इतना स्थूल हो गया, वो सूक्ष्म बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वेदांत के बाद सुनने को हमारे बुद्धि काम नहीं करते, नहीं काम करता, व्यापार में लगाओ, धंधा में लगाओ, फलाना में लगाओ, कहीं भी लगाओ, माना तो कोई नहीं करता है ना। हाँ, इधर पकड़ना हो इधर आओ, तो सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म वस्तु को पकड़ता है, स्थूल बुद्धि स्थूल वस्तु को पकड़ता है। अनिवार्य ऐसे प्रपंच स्थूल है, स्थूल प्रपंच में परमात्मा को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? नाम रूप को धीरे धीरे बाध करना पड़ेगा। जब तक नाम रूप को बाध नहीं करोगे तो सोना की प्राप्ति नहीं होगी। अनिवार्य हार कटा कुंडल का बाध नहीं करोगे तो तुमको कितना तोला सोना है सोना की प्राप्ति नहीं होगी। तो सोना का प्राप्त करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? नाम रूप को बाध करना पड़ेगा। अर्थात आदेशो नेति नेति, ये श्रुति भगवती कहती है, नेति नेति करो। जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, सदा विचारे तस्मात् जगत् जीव परात्मनः, विचार करो जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है। अनिवार्य विचार करो, विचार करते करते जीवात्मा जीव जगत बाधित हो जाता है। जीव भी ब्रह्म नहीं, जगत भी ब्रह्म नहीं, दोनों को बात करते चले जाओ। जीवात्मा और जगत बाध हो जाएगा तो शेष क्या रह गया? जीव जगत बाधित हो गया, परमात्मा शेष रह गया। ठीक है, जो परमात्मा शेष रहने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। देखो, बाद का मतलब होता है मिथ्यात्व का निश्चय, बाद माने अभाव हो जाना, ऐसा नहीं समझना। बाद माने अभाव हो जाना, भूल जाना, विस्मृत हो जाना, इसका नाम बाद नहीं है। क्यों? भूल जाना, मूर्छा अवस्था में भी भूल जाते जगत को, भूलते हैं कि नहीं? सुषुप्ति में भी भूल जाता है, सुषुप्ति अवस्था में भी जगत को भूलते हो कि नहीं? तो मुक्ति हो जानी चाहिए ना, पर ऐसा तो होता नहीं। तो मुक्ति कब होती है? जानने से। सुषुप्ति अवस्था बाधित हो जाता है सब, परंतु भूल जाता है, वो बात माने भूल जाना। सुषुप्ति में जगत विस्मृत हो जाता है, मूर्छावस्था में जगत विस्मृत हो जाता है, पर जगत को विस्मृत हो जाना का नाम ज्ञान नहीं है। जगत रहते हुए जगत में सत्यता का बात करने का नाम ही है विचार। जगत में जो सत्यता बुद्धि हुई ना, जगत सच्चा है, जगत नित्य है, अन्य बात जगत सुखात्मक है, जगत दुखात्मक है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये सब जो है ना, ये सत्यता बुद्धि के कारण आता है। तो जगत में मिथ्यात्व का निश्चय करना, क्या करना, जगत मिथ्या है, मिथ्यात्व का निश्चय करने का नाम ही है बाघ, याद रखना। तो जगत रहेगा, देखोगे सब कुछ होता हुआ भी जगत में क्या नहीं है, सच्चा बना नहीं है। जैसे समझो एक व्यक्ति अपने पत्नी के लिए हीरे का हार लाया, हीरे का हार 1,00,000 रुपया से, उसको देख करके पड़ोस वाला ने कहा हमारे को भी एक हीरे का हार चाहिए, अपने पति से बोला हमको भी एक हीरे का हार चाहिए, क्यों हमारे पड़ोस वाला पहन सकती है, मैं नहीं पहन सकती हूँ, क्या कमी है हमारे अंदर, हमको भी एक हीरे का हार चाहिए। बोले कमी है, उसको लॉटरी का पैसा मिला फोकट का, हमारे पास लॉटरी का पैसा नहीं है, हम कैसे लाएंगे। बोले तुम कैसे भी हो, हमको हीरे का हार चाहिए बस, नहीं तो खाना पीना बंद। हाँ, अरे उसको बहुत समझाया, समझाने पर भी वो मानी नहीं, आखिर में हमको हीरे का हार चाहिए, समझे कि नहीं। दूसरा दिन वैसा रहे, रात भर तो उसको मनाते रहे, मानी नहीं, हीरे का हार के लिए हट करके बैठी है। दुकान जा रहा था तो रास्ते में एक मित्र मिला, मित्र ने कहा क्या बात है, मुंह लटका करके एक दुकान जा रहे हो, क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या। बोले नहीं भाई, ऐसे ऐसे घर में बवाल आ गया, वो हीरे का हार चाहिए उसको, बगल वाले जो है ना, पड़ोस वाले जो है ना, हीरे का हार पहनती है 1,00,000 रुपया से, लम्बे कहां से लाऊं। तो चल तू तो चिंता मत कर, तेरे को मैं हीरे का हार दिला देता हूं, पत्नी को कह करके आना। बोले तू खाना पीना शुरू कर दे, भोजन बनाना, एक हफ्ता के बाद में हीरे का हार आएगा। बोले तुम दिलाओगे। बोला हाँ, क्यों नहीं दिलाऊंगा, तू मेरा मित्र है। तो जा करके पत्नी से कह करके आया, जा कह करके आया तो बोलो चलो अब हीरे का हार दो दिलाओ। तो ले गया फैक्ट्री में, कारखाने में हीरे का हार बनाने के लिए, वो नकली हीरे का हार बनाते हैं ना, उसके दुकान में ले गया। बोले ऐसा बढ़िया हीरे का हार बनाना, हाँ जो असली से ज्यादा चमके। तो ले गया उसको बनाया, एक हफ्ता के बाद में हीरे का हार जो है ना पत्नी को दिया, बोलना नहीं किसी को, है नहीं बात। ये 2,00,000 की है, 1,00,000 की नहीं, 2,00,000 की है, कोई सुनेगा चोरी करके ले जाएगा। अच्छा, बहुत खुश हो गए उस दिन से, गर्मा गर्म नरमा नरम हलवा पूरी खिलाने लगी, खूब खिलाने लगी, देखो हमारा पति कितना अच्छा है, हमारे बात मान लिया फलाना डेमका, समझे गए नहीं। तो उसको तो मालूम नहीं है, तो उससे कहां रह गया, किसी से बोलने के लिए मना किया ना, तो आदमी को दुकान जाने देर है, घर से निकलने तक देर है। इतने में जाकर पड़ोसी से कह दिया, देख मेरे लिए भी एक हीरे का लाया, 2,00,000 का है। बोले भाई तुम तो मकान के मालिक हो, पैसा वाला हो, व्यापारी हो, 2,00,000 लिया तो क्या, हमारे तो लटारी में पैसा लगा पोकट कैसे लाया। वो मुरझा गई, क्यों, उसका 1,00,000 का है, वो 2,00,000 के पहनती है। अब ये बात फैल गई मोहल्ला में, अब कोई एक मंसल था वो हार को चुराने की फिक्र में था, सुराग देखते रहे कब चुराऊं कब चुराऊं। एक दिन जो है स्नान करते वक्त हार को खोल करके टांग रखकर स्नान करने लगे, इतना में उसने उड़ा लिया। अरे स्नान करते कि हीरे का हार कहा है, रोने लगी कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हल्ला हो गया, हार चोरी हो गए चोरी हो गए चोरी हो गए। तो रात्रि के समय जब सेठ जी आए, रोने लगी, बोले क्यों रोती है, बोले आज किसी ने मेरा हीरे का हार ले गया। तेरे को माना गया ना, किसी से बोला नहीं, बोला तो नहीं था, कल पड़ोसी से दिखाया बोला था। तो उसने थोड़ा सा बहुत गर्मा गर्म हुआ, कोई चिंता नहीं करे, एक हाथ तेरे को ला करके और दे दूंगा कोई। अभी देखा पतिदेव नाराज नहीं हुआ हो, उन्होंने डांटा ना फटकारा ना पीटा ना मारा, कुछ नहीं किया, शांत हो गया। तो एक हीरे का हार ला करके उसको, जब हीरे का हार मिला तो विचार करने लगे, इतना रुपया पतिदेव कहाँ छिपा करके रखा है। पहले एक हीरे का हार लाया, अभी एक एक लाख का हीरे का हार, वो पहले तो बोलता रहा हमारे पास 20,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, अभी इतना रुपया कहाँ छिपे रखा, घर में तो हम दो ही आदमी है, आज पूछना पड़ेगा। तो रात्रि के समय जब आया बोला चुपचाप, अरे आज क्या हुआ रे तेरे को, क्या चोरी हो गई क्या, बोले नहीं, बोले क्या तो मुंह फुला करके क्यों रखी है, बोले मुंह फुला करके इसीलिए रखी हूं, तुम इतना रुपया छिपा करके कहां रखा, इतना दिन तक बोला नहीं, दो दो लाख का हीरे का हार लाया, इतना रुपया कहां रखा बताओ। बोले तेरे को हार पहनने से मतलब है कि पैसा गिनने का मतलब है, चल। बोले ना हार भी पहनना है पैसा भी गिनना है, कहां रखा बोलो, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लो एक आवत्ती आ गई। बहुत देर बाद में मनाते मनाते सुनती नहीं, आखिर में रहस्य राज खोलना पड़ा। बोले ये असली हीरा का नहीं है, नकली हीरे का है। तो पहले वाला कैसा था, पहले वाला भी ऐसा ही था, है नहीं बात, पहले वाला भी ऐसा ही था। अभी बात यह है, पहले का हार चोरी हो गई, एक रोता रहा, हाँ दूसरा रोया नहीं। अभी जो हीरे का हार है गला में है नहीं बात, अभी दोनों में से कोई भी रोता नहीं। आखिर में क्यों, पहले का हीरे का हार चोरी हो गया, एक रोता रहा एक मस्त रहा स्वरूप में रहा, अभी क्यों, अभी क्यों दोनों के दोनों जो है ना दुख से बच गया। अभी दोनों को मालूम पड़ गया कि दोनों ये जो हीरे का हार असली नहीं नकली है। अभी जो हीरे का हार पहन रही है तो हीरे का हार को नकली समझने पर हार का स्वरूप बदल गया क्या, कि जैसा क्या वैसा है, तो क्या हुआ, विचार बदल गया दोनों का। पहले सच्चा समझते थे और रोना पड़ा, अभी दोनों समझता है हार नकली है। तो नकली समझने पर भी हार जैसा का वैसा गला में है, हार बदला नहीं, स्वरूप बदला नहीं, सकल सूरत जैसा का वैसा है। ठीक इसी प्रकार संसार को देखना, क्या देखोगे, जगत कैसा है, वो नकली हीरे का हार है। जगत कैसा है, नकली हीरे का हार है, आई नहीं बात, नकली जो हीरा है वो हार है, देखने भर के लिए है, व्यवहार के लिए है, परमार्थ में इसका कोई कीमत नहीं है। ऐसे जगत को देखने का आई नहीं बात, दो तरीका है, आई नहीं बात, जगत को देखने का दो तरीका है। एक रूप में जगत के नाम रूपात्मक जगत को देखो और दूसरा नाम रूप का आधार के रूप में जगत को देखो। वो जो आपने स्वामी जी ने लिखा है, अगरनाथ जी महाराज जी ने किसी पुस्तक में, मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है, आपको भी मालूम होगा, संत लोग सुनाए होंगे, वो मदन मोहन मालवीय जिस समय थे ना काशी में, आंदोलन करते थे, कांग्रेसियों का जो आंदोलन चल रहा था, बड़े बड़े नेताओं को सरकार ने पकड़ करके जेल में डाल दिया, तो मदन मोहन मालवीय टाउन हॉल में, काशी में आप टाउन हॉल देखा है ना, टाउन हॉल बड़ा जगह है, बेनिया बाग है, मदन मोहन या टाउन हॉल है, बड़े बड़े जगह है, तो भाषण दे रहा था। किसी ने पत्रकार ने पूछा, पंडित जी आप सरकार के दलाल है क्या, एजेंट है क्या? बोले क्यों, सरकार इस समय बड़े बड़े जो है ना नेताओं को जेल में डाल दिया और आपको छोड़ दिया, आप भाषण कर रहे हो, क्या कारण है? बोले देखो ना, मैं दलाल हूं ना एजेंट हूं सरकार का, है नहीं बात, सरकार का मैं एजेंट नहीं हूं, दलाल भी नहीं, कुछ भी नहीं हूं, परंतु उन जो कृपालनी आचार्य कृपालनी है, अन्य जवाहरलाल नेहरू है, सीबी गुप्ता है, इन लोगों को पकड़ने का कारण क्या है? इन लोग कहते विदेशी सामान को होली जलाओ, विदेशी सामानों को, कपड़ा को जला दो, और हम कहते स्वदेशी कपड़ा पहनो, स्वदेशी का उपयोग करो, स्वदेशी सामान का उपयोग करो, तो अंतर क्या पड़ा दोनों में? स्वदेशी पहनो, स्वदेशी वस्त्र का वस्त्र पहनो, स्वदेशी सामान का उपयोग करो, और वो कहते विदेशी का होली जलाओ, आग लगाओ, तो उनके हिसाब से कानून भंग होता है नहीं बात, और हमारे वाणी में कानून भंग नहीं होता है, तो ऐसे ही समझ लेना। जगत को देखने का क्या तरीका है? जगत को देखने की यही दो तरीका है, एक निषेध मुख और एक विधिमुख। तो विधिमुख से देखोगे संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, सर्वम कल्पितम ब्रह्म नियन अनास्ति किंचन, समझ गए नहीं? सर्वम कल्पितम ब्रह्म, सब परमात्मा ही परमात्मा, वासुदेवम सर्वम इति, ये सब वासुदेवमय ही है, जगत जो है ना परमात्मा का ही स्वरूप है, ईशा वाष्यम इदम सर्वम परिदृश्यमान नाम रूपात्मा, जगत जो है ना सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर के सिवाय दूसरा कुछ आए नहीं। जगत को देखो परमात्मा, सिया राम मय सब जगत आनी, करो प्रणाम जरिजु को पानी, बोलते कि नहीं बोलते? सिया राम मय जगत कोई करता है ऐसा? तो सिया राम मय जगत को जानने के लिए साधना करनी पड़ती है, बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ता है, तदाकार बनानी पड़ती है, ऐसे थोड़े जगह में जाकर देखोगे, अब इसको सियाराम करके जाओ फिर देखो, चंदगे नहीं। तो ऐसे ही सर्वतोमुख स परमात्मा का ही मुख है, सर्वतो स्रोत इंद्रिय विश्वत चक्षुरुत विश्वतोमुख विश्वत बाहुत विश्वत स्पात संभव्यं धमते संपद त्रैर दिया वा भूमि जनयन देवी का। संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, ये देखो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूता अंतरात्मा, एको देव, देव एक ही है, श्रुति पुकारती है ओ मनुष्य ओ मानव सुनो सुनो सुनो, एक ही देव की पूजा करो, एको देव, ये देव कहाँ रहता है? का सर्वभूतेषु, कहाँ रहता है ये देव? सर्वभूतेषु भूतों में रहता है ना, मनुष्य में नहीं रहता है, मनुष्य में नहीं रहता है ना। भवन्ति इति भूताः प्राणिनः, प्राणी को भूत कहते हैं, नहीं बात, तो भूतों में रहते, जितने भी पैदा होते हैं ना, सायो भूत, स्थावर हो, जंगम हो, उद्भिज हो, जरायुज हो, श्वेतज हो, अंडज हो, 84 लाख जोनिया हो, दुना से परे हो, सबके रूप में एको देव, सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी, जैसे पानी में शीतलता व्यापता है, जब ही अग्नि में उष्णता व्यापता है, जैसे पृथ्वी में गंधा व्यापता है, जल में मधुरता व्यापता है, ऐसे परमात्मा सब में व्यापता है। सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी, आगे बोलते हैं सर्वभूत अंतरात्मा प्रत्यंग जनान स्तिष्ठति, ये जिसमें आया प्रत्यंग जनान स्तिष्ठति, कहां नहीं रहता परमात्मा, कहां नहीं रहता है, ऐसा बोलो, ईश्वर कहां नहीं रहता है। यदि तुमसे कोई बोले ईश्वर कहां रहता है तो बोलना ईश्वर कहां नहीं रहता है, ईश्वर कहां रहता है और ईश्वर कहां नहीं रहता है, तुम्हारा ईश्वर नरक में है कि नहीं, अच्छा अरे वाह, अगर ईश्वर नरक में नहीं है तो अंतर्जामी कैसे होगा, व्यापक कैसे होगा, स्वर्ग नरक तो आपके लिए हमारे लिए है, जेलखाना कैदियों के लिए है, परंतु जेला कैदखाना में रहता है कि नहीं, जेल में वो नहीं रहता है, तो उसको सजा मिला क्या, तो ईश्वर कहां नहीं रहता। हमारे एक मुकदमा में एक आदमी हार गया, 12 साल 15 साल से लड़ाई लड़ रहा है, मकान गिर गया और उसमें अभी हार गया, तीन चार दिन पहले आया आदमी आया था, तो मैंने कहा कैसे हार गया तुम, तुम्हारा तो कागजात ठीक था। बोले जज ने हमसे नहीं, वकील ने बोला सच्चा बोलना, अच्छा जज ने हमसे एक ही बात पूछा, मकान गिर गया इसके बाद तुमने मुकदमा किया कि मकान रहते हुए मुकदमा किया, बोलो इतने में हार रहा जीता रहा है, मकान गिर गया तब तुमने मुकदमा किया मालिक के बिल्डर के विरुद्ध में, या मकान रहते हुए मुकदमा किया, ये दो बात है हारने या जीतने में, बोलो। बोला हमने ऐसा कहा तो जज ने डिसमिस कर दिया मुकदमा, चलो दो शब्द है, देखो गिरने के बाद में मुकदमा करने से, तो ऐसे देखो एक शब्द जाल है, शब्द जाल, शब्द के अर्थ को समझना पड़ता है, वकील जो प्रश्न करते हैं ना, जज जो प्रश्न करता है तो प्रश्न को समझना पहले इसको वो करना पड़ता है, ऐसे ये प्रपंच है, प्रपंच को तो मिथ्या कब समझोगे, ज्ञान होने के बाद या ज्ञान होने से पहले, अधिष्ठान के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी कि सर्प की निवृत्ति से अधिष्ठान का ज्ञान होगा, दोनों में से बोलो, ये जल निर्णय, अधिष्ठान के ज्ञान के बिना अध्यस्त की निवृत्ति नहीं होती है, अधिष्ठान के ज्ञान होगा प्रकाश से, समझे कि नहीं, अध्यस्त की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से होते हैं, रस्सी के ज्ञान हुए बिना रस्सी में अध्यस्त जो सर्प है वो सर्प की निवृत्ति नहीं होगी। तत्काल कैसे, तत्काल टिकट करने जाओ स्टेशन में, मिल जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम् कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवर्व्याप्तदेहाय दक्षिणा तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पतिः हरः।